27 पारा शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा सा तारुफ दे देती हूँ। DQ 2023 पारा नंबर 27, 27 नाम है इस पारे का, फमा खत बुकुम, बस क्या है तुम्हारी मुहिम। इस पारे में सूरत जारियात का बाकी हिस्सा 31 से 60, फिर सूरत तूर, सूरत नजम, सूरत कमर, सूरत अर्रहमान, सूरत अलवाक़िया, सूरत अलहदीद है, जो एक से एक जैम है कुरान का। इसमें पारे की थीम पे चले अजमत सहाबा में तो फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अभी हम आयते पढ़ने लगे हैं। और इस पारे की शख्सियात हैं नेकियों में दौड़ धूप करने वाले सहाबा। हकीकत ये कि सहाबा की भाग दौड़ नेकियां कमाने में थी, जैसे आज हमारे भाइयों, बल्कि हमारी अब बहुत सारी बहनों और बहुत सारी बेटियां और बेटों की दौड़ धूप पैसे कमाने में। डॉलर चाहिए, क्रोन चाहिए, समर जॉब्स चाहिए, वीकेंड जॉब्स चाहिए, फिर उसके तकाजों में कुछ पहनना भी पड़ता है, कोई हदबंदियाँ भी टूटती हैं। तो वल्लाह ही अपने बच्चों को नेकियां कमाने का शौक़ दे दें, सकीनत मिल जाएगी और उनकी ज़िंदगी लग्जरियस लाइफ होगी इंशाल्लाह। आज की दुआ हमारे लिए अल्लाह ताला के आगे रात को उठकर बेदार होते वक्त की दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शयइन क़दीर, अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये सही बुखारी में है 1154, हसनुल मुस्लिम में भी। रात की करवटों की दुआ है, कहा कि जो ये दुआ करे रात को उठता है और पढ़े, फिर उसके बाद कहता है अल्लाहुम्मग़फिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करते हैं। और अगर उसके बाद उठकर वुजू करके नमाज़ पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसकी नमाज़ को भी कबूल करते हैं। रात की करवटों की दुआएं जिस नबी ने सिखाई उसके लिए मोहब्बत से कहिए अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद। आइए शुरू करते हैं सूरत जारियात आयत 31 से, फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून। रुकू नंबर 1 आयत 31 से 46। अल्लाह ताला के दर्दनाक अजाब से डरना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा क्या मकसद है, यानी तुम्हारी मुहिम क्या है, व्हाई डिड यू कम हेयर, क्यों आए हो। उन्होंने जवाब दिया, हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए, मुराद कौम लूत, ताकि हम इन पर मिट्टी के कंकर बरसाएं जो तेरे रब की तरफ से निशान जदा हैं इन हद से गुजर जाने वालों के लिए। बस जितने ईमानदार वहाँ थे हमने इन्हें निकाल लिया, और हमने वहाँ मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया, ओनली वन होम। और बताओ किसका घर था, लूत अलैहिस्सलाम का। क़यामत के दिन इनके साथ एक भी मर्द नहीं होगा। और हमने इनके लिए जो दर्दनाक अज़ाब रखते थे कामिल अलामत छोड़ दी। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी हमारी तरफ से तंबीह है कि हमने इसे फिरौन की तरफ खुली दलील देकर भेजा, बस इसने अपने बलबूते पे मुंह मोड़ा, यानी खुद को बड़ा समझते हुए, और कहने लगा ये जादूगर है या दीवाना है। बिलाखिर हमने इसे और इसके लश्करों को अपने अजाब में पकड़ कर दरिया में डाल दिया, वो था भी मलामत के काबिल। अब देखिए कुरान के एंड पे ना इन सारे चीज़ों को अल्लाह ताला रिवाइज करा रहे हैं जो हमने पूरे सफ़र में तय की। बिलाखिर हमने इसे और इसके लश्करों को अपने अजाब में पकड़ कर दरिया में डाल दिया, वो था भी मलामत ज़दा। इसी तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने इन पर खैर और बरकत से खाली आंधी भेजी, वो जिस चीज़ पर गिरती थी इसे वो सीधा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। और समूदियों के किस्से में भी इबरत है जब इनसे कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक फ़ायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की, जिस पर इन्हें इनके देखते देखते तुंदो तेज़ कड़ाके ने हलाक कर दिया, बस ना तो वो खड़े हो सके और ना बदला ले सके। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी इससे पहले यही हाल हो चुका था, वो भी बड़े नाफरमान लोग थे। क्या आपको इन कौमों की हलाकत का सुनकर खौफ महसूस होता है? जितनी चीज़ें एक एक करके उन कौमों में थी ना, वो सारी इकट्ठी आज उम्मत मुस्लिमा में है। मसलन कौम लूत पे देखिए आयत 31 से 37 में क्या चीज़ है। इस कौम का तذکرہ कुरान में 7 बार आता है। फवाहिश और बहुत से गुनाहों में मुबतला थे, हम जिंस परस्त थे, दुनिया की सरकश कौम थे और बद अखलाक कौम थी। नफसानी ख्वाहिशात जिससे पहले किसी कौम में मौजूद नहीं थी वो इनमें थी, और इन्होंने उसका गलत यूज़ किया। अपने इस बद फेल पर शर्मिंदा होने की बजाय फ़ख्र करते थे और अपनी बद किरदारी को ऐब नहीं समझते थे बल्कि इस पे फ़ख्र करते थे। कुछ कहानी आज भी ऐसी है। अल्लाह ने इनके साथ क्या किया, ان کو بحر مردار میں پھینک دیا. جو آیت آئی ہے نا 37 میں کہ اللہ نے اس قوم کو ایک نشانی بنا دیا, تو وہ نشانی کیا تھی کہ اس قوم کو فرشتے جبرائیل نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, یوں جیسے چھاج میں ڈال کر نا گندم کو اوپر لے کے جاتے ہیں نا چھانٹتے ہیں, ان کو اس طرح اوپر کر کے تو جا کے وہاں سے پلٹا دیا, جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی چھتیں نیچے اور جو فرش تھا وہ اوپر آ گیا, اور وہ بستی اتنی گہرائی میں جا کر ڈوبی کہ آج بھی بحر مردار کے نیچے اندر ہے, آج بھی وہاں گرم پانی ہے. اگر انڈا رکھ دو تو کہتے ہیں کہ وہ ابل جائے, وہ اتنی ہے کہ وہاں سے گزرا نہیں جاتا. تو آج جو کام ہو رہے ہیں, کیا یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں گے؟ آپ اور میں اپنی نسلوں کو تیار کر لیں اس کتاب کو عام کرنے کے لیے. بحر مردار یہ وہ نشانی تھی جب فرشتوں نے اس پورے خطے کو اوپر اٹھا کر نیچے الٹا دیا, پورا گھس گیا, سطح سمندر سے 400 کلومیٹر نیچے گیا, 400 کلومیٹر, یہاں سے حیدرآباد سے بھی دور, میرے والے سکھر سے بھی دور, امیجن کیجئے. ذرا پریشر سے گیا نا تو اتنی اندر چلی گئی چیز, اور اس کے اوپر کالا پانی چڑھایا جو ایک سمندر کی شکل اختیار کر گیا. پانی کے ذخیرے کو بحر میت یا بحر مردار یا غرقاب لوتی کہا جاتا ہے. اس بحر مردار جس کو انگلش میں ڈیڈ سی کہتے ہیں, اس کا جنوبی علاقہ آج بھی عظیم الشان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے. اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے. اور مسند احمد کی روایت 5984 ہے, پڑھ لیجئے گا. ابن عمر کی روایت ہے کہ جب تبوک کے سال میں قوم سمود کے تباہ شدہ کھنڈرات اور گھروں کے قریب کئی جگہ پر صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا, لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی پیا جس سے قوم سمود پانی پیتی تھی, اور اسے آٹا بھی گوندھ لیا اور گوشت ڈال کر ہانڈیاں بھی چڑھا دیں. آپ کو معلوم ہوا تو آپ کے حکم پر لوگوں نے ہانڈیاں الٹ دیں اور گوندھا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیا. اطاعت سمینا و تانا. نبی وہاں سے کوچ کر گئے اور اس کنویں پر جا کر پڑاؤ کیا جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی. تو آپ نے کہا کہ اب ادھر سے پانی لو اور استعمال کرو, اور تباہ شدہ بستیوں کی جگہوں پہ مت جاؤ, کہیں وہ عذاب تم پر بھی نہ آ جائے. تو آپ دیکھیے کہ آئے 31 سے 46 میں ہم نے پانچ قوموں پہ پانچ عذابوں کی کیفیت پڑھی ہے. قوم نوح پہ سیلاب آیا, قوم سمود کی تباہی بجلی کے کڑاکے سے ہوئی, قوم فرعون دریا میں ڈبو دی گئی, قوم عاد آندھیوں سے تباہ ہوئی, قوم لوط مٹی کے کنکر سے. یہ پانچ کیا ہیں؟ اللہ کے لشکر. نعمتیں ہیں نا, فائدہ ہوتا ہے نا, یہی نعمتیں حد سے بڑھتی ہیں. تو جب کوئی حد سے بڑھتا ہے نا تو اللہ کسی ایک نعمت کو حد سے بڑھا دیتا ہے, کبھی سیلاب اور کبھی طوفان کی صورت میں. ہم نے کیا سیکھا؟ حدوں سے نہیں گزرنا, دردناک عذاب سے ڈرنا ہے, حق سے منہ نہیں موڑنا, سرکشی نہیں کرنی. اور اس کے بعد پھر آخری رکوع ہے سورت کا, رکوع نمبر 2 47 سے 60. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے. والسما بنینا حبی ایدن, اللہ آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں, اور زمین کو ہم نے فرش بنایا پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں, اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا کہ تم نصیحت حاصل کرو, بس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ کرو. ففروا الی اللہ, محبت سے بھاگو اللہ کی طرف, رجوع کرو, یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ, بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آئے انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ. دیکھیے دھان کے پان, وہی الزام ہے ہر نبی پہ. کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں. تو آپ ان سے منہ پھیر لیں, آپ پر کوئی ملامت نہیں, اور نصیحت کرتے رہیں, یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی. میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, بڑی مشہور آیت ہے اور بڑے لوگوں کو زبانی یاد ہے. آپ نمبر نوٹ کیجئے, سورت زاریات آیت 56. نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں, اللہ تعالیٰ تو خود ہی روزی رساں توانائی والا اور زوراور ہے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے مثل حصہ ملے گا, بس وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں, بس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. تو یہ تھی جی ففروا الی اللہ, اس بارے کا تھیم. صحابہ کرام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے, وہ اس آیت کی عملی تصویر تھے, وہ بھاگتے تھے, ان کی زندگی کا محور اللہ اور اس کا رسول تھا, ان کی دوڑ دھوپ اللہ کی رضا کو پانے کی خاطر تھی, ان کی فکریں آخرت کی تھی, कभी शौक से भागते थे, कभी खौफ से भागते थे, तो फ़िरु इलल्लाह, क्या है अल्लाह की पनाह में आना, सिर्फ अल्लाह वाहिद पे तवक्कुल करना, नाफरमानी के कामों से भाग कर फरमाबरदारी के कामों की तरफ आना, कुफर से ईमान की तरफ की भाग दौड़, गैर अल्लाह से अल्लाह की तरफ की दौड़ भाग, और रजू इलल्लाह करना। आज आप और मैं देखे हमारी दौड़ धूप की तरह, जायज़ कामों में भी है तो हद में रखिए, भाग भाग के काम करते हैं और बैठ के नमाज पढ़ते हैं, बाजार जानो सब ठीक ठाक फिट फटाट चल फिर भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, और दीन के रास्ते अल्लाह के रास्ते नहीं, सीढ़ियाँ और चलना चलाना मुश्किल। फिर आगे मकसद तख्लीक वमा खलकतुल जिन्न वल इंस, इबादत बंदगी, सिर्फ अहकाम शरिया यानी नमाज रोज़ा हज ही नहीं, 24 घंटे की गुलामी, 24/7, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन और 365 दिन साल के, नहीं काम छोड़ सकते हम। वी आर ऑलरेडी टू लेट, हमने अपनी बहुत ज़िंदगियाँ ज़ाया कर दी। आप वक्त से काम शुरू करें ना तो बीच में रिलैक्सेशन मिल जाता है, पता चला मेहमान चल पड़े और आपने अभी खाना भी नहीं बनाया तो फिर रेस्ट करेंगे क्या आप? हमारा वक्त है काम का, आराम कहाँ, कब्र में इंशाल्लाह। फिर जिस्म दिल और रूह और नफ्स को अल्लाह के आगे झुकाना, ये भी बंदगी है। हमने क्या करना है, मकसद हयात को समझना है, अल्लाह की तरफ दौड़ धूप करनी है। अच्छा, कुछ अल्लाह की तरफ दौड़ते हैं और कुछ अल्लाह से दौड़ते हैं, कुछ नेकियों की तरफ दौड़ते हैं और कुछ नेकियों से दौड़ते हैं, बाकी खुद ही दौड़ लीजिए। और भाग भाग के तवाफ़ भी करते हैं और सही भी और सफ़ा मरवा की करते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में सब पीछे रह जाता है। अल्लाह हमें दौड़ धूप करने वाला बना दे। फिर सरकशी नहीं करनी, नसीहत करनी है, जुल्म नहीं करना और जल्दी नहीं मचानी। तो सूरत जारियात का पैगाम, अल्लाह का गुलाम बन के रहना है, अल्लाह की अता करदा सलाहियतों को इसके रास्तों में लगाना है और अल्लाह की इताअत करनी है ताकि आखरत संवर जाए। आगे जी सूरत तूर, 52 नंबर की सूरा है, 49 आयतें हैं। तूर वो ख़ास जगह जहाँ मूसा को तौरात मिली, व तूरी व किताब मस्तूर फी रक़ मंशूर वल बैतिल मामूर। इतना सौती हुसन है सूरत में, वजद में आ जाता है बंदा अगर इसको किसी अच्छे कारी की आवाज़ में सुने। तो रुकू नंबर 3 है, पहली 28 आयात, 41 से 28। टॉपिक क्या है, कि अल्लाह से डर के रहना है। कसम है तूर की और लिखी हुई किताब की, जो झिल्ली के खुले हुए और आँख में है, और आबाद घर की और ऊंची छत की और भड़काए हुए समंदर की, बेशक आपके रब का अजाब वाक़े होकर रहने वाला है, इसे कोई रोकने वाला नहीं। इस दिन आसमान थर थराने लगेगा और पहाड़ चलने फिरने लगेंगे। तेज़ लट्टू जेन में लाइए घूमता हुआ, बिल्कुल वो मंजर आता है। और वही लो यौमिलमकजबीन, उस दिन जुटलाने वालों की बुरी खराबी है, जो अपनी बेहुदा गोई में उछल कूद कर रहे थे, जिस दिन वो धक्के देकर आतिशे जहन्नुम की तरफ लाए जाएंगे। यही वो आतिशे दोज़ख है जिसे तुम झूठ बतलाते थे। अब बताओ क्या ये जादू है, या तुम देखते ही नहीं हो? जाओ दोज़ख में, अब तुम्हारा सब्र करना और ना करना तुम्हारे लिए यकसां है, तुम्हें फ़क्त तुम्हारे किए का बदल दिया जाएगा। यकीनन परहेजगार लोग जन्नतों में और नेमतों में हैं, इन्हें जो इनके रब ने दे रखी हैं इस पर खुश खुश हैं। आप भी खुश हैं जो आपको आपके रब ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके परवरदिगार ने इन्हें जहन्नुम के अजाब से बचा लिया, तुम मज़े से खाते पीते रहो इन आमाल के बदले जो तुम करते थे। आमाल इल्म नहीं है, बराबर बिछे हुए शानदार तख्ते पर तकिए लगाए हुए होंगे, और हमने इनके निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से करा दिए हैं। जन्नत में भी निकाह है, लिविंग टुगेदर नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। और जो लोग ईमान लाए और इनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की, हम इनकी औलाद को इन तक पहुंचा देंगे। अल्लाह आपकी औलादों को आपके साथ जन्नतों में ले जाए, और आपकी औलादें ऊपर हों और आप उससे नीचे हों, ये क्या बात हुई, आमीन। और इनके अमल से हम कुछ कम न करेंगे, हर शख्स अपने अपने आमाल का गिरवी है, हम इनके लिए मेवे और मरगूब गोश्त की रेल पेल कर देंगे। खुश तबई के साथ एक दूसरे से जामे शराब की झीना झपटी कर देंगे, जिस शराब के सरूर में ना तो बेहुदा गोई होगी ना गुना, और इनके इर्द गिर्द इनके नौ उमर गुलाम फिर रहे होंगे, गोया मोती थे जो ढके हुए थे, और आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल करेंगे, कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर वालों के दरमियान बहुत डरा करते थे। मोमिन अपने घर वालों के मामले में अल्लाह से बहुत डरता है, और अपने घर वालों की मोहब्बत में अल्लाह से बहुत डरता है कि कहीं गिबतें और चुगलियाँ ना कर दें मियाँ बीवी बैठ कर दूसरों की। घर में जो नेक है ना, असल में वो नेक है। बाहर की दुनिया के सामने तो हम सारे ही बड़े अच्छे हैं। घर वाले गवाही देंगे तो होगी, आपकी गवाही ले लूँ? अल्लाह से डर के रहिए, घर में बेतकल्फी में बहुत गुनाह हो जाते हैं। बस अल्लाह ताला ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया और हमें तेज़ और तुन गर्म हवाओं के हिसाब से बचा लिया। अल्लाह आपको भी बचा ले। हम इससे पहले ही इसकी इबादत किया करते थे, बेशक वो मोहसिन और मेहरबान है। तो सूरत तूर के शुरू में बैत मामूर की बात हुई है, चंद बातें सुनिएगा। बैतुल मामूर सातवें आसमान पर बैतुल्ला के महाज पर, यानी बिल्कुल जहाँ खाना काबा है ना, इसके ऊपर की सीध में अगर आप ऊपर हाथ करें ना, तो वहाँ एक फरिश्तों का बैतुल्ला है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। ये फरिश्तों की इबादत का और इनका हरम है। इसके और बैतुल्ला के दरमियान इतना फासला है जितना सातवीं ज़मीन की तह तक, और इसमें 70,000 फरिश्ते हर रोज़ दाखिल होते हैं। जो एक बार दाखिल हो चुके, इनकी फिर कभी बारी नहीं आती। इतने फरिश्ते हैं आपकी मदद के लिए। और ये वो घर है जिसकी हजरत आदम ने तामीर फरमाई थी, और फिर तूफ़ान के ज़रिए सातवें आसमान की तरफ इसे उठा लिया गया था, और इसे सर्राह स्वाद से सर्राह भी कहते हैं। कसम है आसमान की जो कि हर चीज़ से बुलंद है। ये तफसीर इब्ने अब्बास में जाकर आप खुद भी पढ़ लीजिए। तो बैतुल मामूर आसमान का कह लीजिए कि बैतुल्ला है। फिर उसके बाद अब यहाँ बड़ी प्यारी आयत आई थी कि माँ बाप और औलादों को जन्नतों में कैसे मिलाया जाएगा। तो साले वालदेन अनमोल ख़जाना, माँ बाप के अखलास और तकवा की बुनियाद पर अल्लाह ताला इनकी नेक औलाद के दर्जे बुलंद कर देगा। अल्लाह ताला का दुगना एहसान औलादों को वालदान से मिलाना, कमतर दर्जे वालों को ऊंचे वालों पे फ़ाइज़ कर देगा। यानी दोनों में से जो ऊपर होंगे ना, तो नीचे वाले को उसके लिए अपग्रेड। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इकोनॉमी क्लास से किसी को उठाकर फर्स्ट क्लास में भेज दिया जाए क्योंकि वहाँ कोई आपका अपना बैठा हुआ है। यहाँ तो वैसे कोई नहीं बैठने देते, खाली छोड़ देते हैं, और पीछे इतने तंग बैठे होते हैं लोग, लेकिन खुदा खौफी नहीं है लोगों को, हम क्या करें? और वो आपसे क्या कहेंगे कि जी पैसे दीजिए तो आ जाइए, फिर हम नहीं जाते, है ना? तो फर्स्ट क्लास क्या है, आगे का दर्जा, और इकोनॉमी पीछे का। वालदेन की आंखें ठंडी हो जाएंगी और औलाद अपने बड़ों के पास खशाश बशाश होंगे। ऐसा ना हो कि अपनी औलाद के बगैर जन्नत में जाएं। ज़रा सोचिए वो जन्नत कैसी होगी, जाके पता चला कि बच्चे तो इधर आए नहीं, या तो पिकनिक में नहीं जाते, कोई दिल करता बच्चों के बगैर, घर वालों के बगैर क्या मज़ा है? खुशियाँ बड़ी अधूरी होती हैं परदेस में। ये परदेस वालों से पूछिए, उनके लिए अपने क्या हैं? और अगर आप अपने होते सोते ना मिलें जुलें, और आप हैं नहीं है, पता ही नहीं है कि आप भी दुनिया में हैं कि नहीं है, तो क्या क्या दिन ब दिन हमारे रिश्ते फीके नहीं हो रहे? चाहत मोहब्बत ख़त्म नहीं हो रही? सिर्फ मादा परस्ती, देना और लेना, दैट्स इट। वो खिंच वो खूब नहीं रही अब दुनिया में रिश्तों में। अल्लाह रिश्तों की वो जो ज़िंदगी है उसको कायम कर दे। फिर इसी तरह से मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, हज़रत खदीजा ने नबी से अपने दो बच्चों के बारे में पूछा जो ज़माने जाहिलियत में मर गए थे। कितनी प्यारी हदीस है, सुनिएगा। आपने फरमाया वो जहन्नुम में है। फिर इस पर अम्मा को गमगीन देखा तो फरमाया, अगर तुम इनकी जगह देख लेती तो तुम्हारे दिल में इनका बुग़्ज़ पैदा हो जाता। फिर उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरा बच्चा जो आपसे हुआ वो कहाँ है? फरमाया, वो जन्नत में है। मोमिन बिमा अपनी औलाद के जन्नत में है। फिर आपने उसके बाद इस आयत की तिलावत सुनी। बस आप ये आखिरी हिस्सा याद रखिए, शुरू का निकालते हैं। क्या पता चला, नेक औलादें माँ बाप से मिलेंगी। हुस्ने कारकर्दगी के इनामात, आयत 21 से 27 की रोशनी में, जन्नते नईम, मज़ेदार खाने पीने। अच्छा, अल्लाह को पता है कि बंदों को खाने पीने से बड़ा मज़ा आता है। तख्तों पर तकिए लगा के आराम फरमाना, हूरों के साथ निकाह, शराबे तहूर पिलाया जाना, और खुशहाली। आपने मैंने क्या करना है, बेहुदा गोई से बचना है, झुठलाना नहीं, अल्लाह से डर के रहना है, अच्छे अमाल करने हैं, दुआएं मांगनी है, और अल्लाह रहीम है, इस पर ईमान लाना है। आगे जी रुकू नंबर 4, 29 से 49, यानी आखिरी रुकू है सूरह तूर का। अल्लाह के पास इल्मे गैब है, फज़क्किर फ़मान तभी नेमत रब्बी का, तो आप समझाते रहिए क्योंकि आप अपने रब के फजल से ना तो काहे ना दीवाने, क्या काफिर यूं कहते हैं कि ये शायर है? हम इस पर ज़माने के हवादिस यानी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। कह दीजिए तुम मुंतज़िर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में हूँ। क्या इनकी अक्ल इन्हें यही सिखाती है, या ये वो लोग हैं जो हैं ही सरकश? क्या ये कहते हैं कि इस नबी ने इस कुरान को खुद घड़ लिया है? वाक़ ये है कि वो ईमान नहीं लाते। अच्छा, अगर ये सच्चे हैं तो भला इस जैसी एक ही बात ये भी तो ले आए। ये नोट कीजिए, ये आखिरी चैलेंज है। कुरान में चार चैलेंजिंग आयतें थी कि इस कुरान जैसा ले आओ, तो ये आखिरी मौका हम पढ़ रहे हैं। क्या ये बग़ैर किसी पैदा करने वाले के खुद बखुद पैदा हो गए हैं, या खुद पैदा करने वाले हैं? क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया? बल्कि ये यकीन न करने वाले लोग हैं। या क्या इनके पास तेरे रब के ख़जाने हैं, या इन ख़जानों के ये दारोगा हैं? ये जो क्वेश्चन आंसर होता है, ये क्या होता है भला? थॉट प्रोवोकिंग, सोचो तो सही। या क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर सुनते हैं? अगर ऐसा है तो इनका सुनने वाला कोई रोशन दलील तो पेश करे। क्या अल्लाह की तो सब लड़कियां हैं और तुम्हारे यहाँ बेटे हैं? क्या तो इनसे कोई उजरत तलब करता है कि इसके तावान से बोझल हो रहे हैं? क्या इनके पास इल्मे गैब है जिसे ये लिख लेते हैं? क्या ये लोग कोई फरेब करना चाहते हैं? तो यकीन कर लें कि फरेब खुर्दा तो काफिर ही हैं। क्या अल्लाह के सिवा इनका कोई माबूद है? हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला इनके शिर्क से पाक है। अगर ये लोग आसमान के किसी टुकड़े को अगर गिरता हुआ भी देख लें, तब भी कह देंगे ये तो तह बतह बादल है। तो इन्हें छोड़ दे, यहाँ तक कि इन्हें उस दिन से साबिका पड़े जिसमें ये बेहोश कर दिए जाएंगे, जिस दिन इन्हें इनका मकर कुछ काम न देगा और न वो मदद किए जाएंगे। बेशक जालिमों के लिए इसके अलावा और भी अजाब हैं, लेकिन इनमें से अक्सर बेइल्म है। नोट कर रहे हैं, बेइल्मी को बार बार बेइल्मी है। और आज भी हमारी उम्मत में ज़्यादा खराबियां इल्म की कमी की वजह से हैं। तो अपने रब के हुक्म के इंतज़ार में सब्र से काम ले, बेशक तुम्हारी आंखों के सामने है। सुबह को जब तू उठे तो अपने रब की पाकी और हम्द बयान कर, और रात को भी इसकी तस्बीह पढ़, और सितारों के डूबने के वक़्त भी। तो ये है वो दुआ जो हम पढ़ते हैं कब? रात के बीच के वक्त में, ला इलाह इल्लल्लाह वहदहू। शुरू में भी आपको दे दी, ये बुखारी की रिवायत है 1154। तो ये जो रात की करवटों की दुआएं ना, ये बड़ा इखलास देती हैं। कोई नहीं होता आपके पास उस वक्त और आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। अपनी करवटों में चेक किया करें कि एकदम उठती है तो मुंह से क्या निकलता है। किसी के सुभान अल्लाह निकलता है, कोई इस्तग़फार, और कोई हाय हुई करता है। तो ये दुआएं इतनी अच्छी याद हो जाएं कि हमारी ज़ुबान पे जारी हो जाएं। क्या सीखा? एक तो ये दुआ याद करनी है इंशाल्लाह, नसीहत करना है, हद से नहीं बढ़ना, बुरी चालें नहीं चलनी, अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं बनाना, सब्र करना है और अल्लाह की तस्बीह करनी है, और आगे सूरत नजम शुरू करनी है। क्या है इसका नंबर? 53 और 62 आया था। छोटी छोटी आयतें हैं और बड़ी प्यारी सी ये सूरतें हैं। आप देख रहे हैं कि ये तो बड़ी इंजॉइंग सी लग रही हैं, मुझे रिलैक्सिंग लग रही हैं, क्योंकि इसमें कोई सुलह उदैबिया की बातें नहीं हैं। चलिए सूरत नजम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नज्मीज़ा हवा मा दुल्ल साहिबकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा। वही इलाही का इसमें तज़किरा है, मेराज का सफ़र है। मक्का में अल्लाह के नबी ने सूरत नजम की जब तिलावत की और आयत सजदा आई, तो इस पे इतना साथ पे यकीन आया कि लोगों ने सजदा कर लिया। आगे एंड पे सारी आयत, यानी आयत सजदा, ये है वो सूरत के जिसमें सजदा कुफार ने भी कर लिया। एक शख्स रह गया था जिसने नहीं किया, उसका नाम उमैया बिन खल्फ था। तो उसने अपने हाथ में ऐसे कंकरी या मट्टी ली और इसको पेशानी तक ले गया, कहने लगा मेरे लिए यही काफ़ी है, और इसीलिए फिर ये कुफर पे मरा था। और बास रिवायत में उतबा बिन रबी इसका नाम आता है। ये बुखारी की रिवायत है 1067। और इसी पे फिर हबशा से लोग वापस आ गए थे, क्योंकि अफवाह फैल गई कि मक्का वाले तो मुसलमान हो गए हैं, मोहम्मद के साथ सजदे कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल आइए देखते हैं, रुकू नंबर 5 है, आयत 1 से 25। 1 से 25, वन नजमी इज़ा हवा। कसम है सितारे की जब वो गिरे, कि तुम्हारे साथी ने ना राह गुम की ना टेढ़ी राह पर है, ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं। ये तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है, इसे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया। जो जोरावर है फिर वो सीधा खड़ा हो गया। ये सारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कह लीजिए एक्शंस हैं। और वो बुलंद आसमान के किनारों पर था, फिर नज़दीक हुआ और उतर आया, बस वो दो कमानों के बक़दर फासले पर रह गया, और इससे भी बल्कि इससे भी कम। बस उसने अल्लाह के बंदे, कौन है ये, नबी सल्लम को बंदा कहा जा रहा है। जहाँ भी अहम बात होगी आप देख लीजिए अब्द का लफ्ज़ है, वहाँ सुबहान अल्लज़ी में भी अब्दी ही का लफ्ज़ था, या मेराज जो आसमानी सफ़र है उस पर भी अब्द की बात है। बंदे को वो वही पहुँचाई जो पहुँचाई, दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे पैगंबर ने देखा। क्या तुम झगड़ा करते हो इस पर जो पैगंबर देखते हैं? इसे तो एक मरतबा और भी देखा था सिदरतुल मुंतहा के पास, इसी के पास जन्नतुल मावा है, जबकि सिदरा को छुपाए लेती थी वो चीज़ जो इस पर छा रही थी। ना तो निगाह बहकी ना हद से बड़ी, यकीनन इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से बास निशानियां देख ली। क्या तुमने लात और उज्जा को देखा और मनात तीसरे पिछले को? क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं? नाउसुबिल्ला। और ये उनके बुतों के नाम थे, लात अल्लाह की फीमेल, उज्जा अल अजीज की फीमेल, और मनात अल मन्नात की फीमेल बनाई हुई थी अपने जोम में। फरमाइए तो बड़ी बेइंसाफी की तकसीम है, दरअसल ये सिर्फ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने इनके लिए रखे हैं। अल्लाह ने इनकी कोई दलील नहीं उतारी, ये लोग सिर्फ अटकल के और अपनी नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़े हुए हैं, और यकीनन इनके रब की तरफ से इनके पास हिदायत आ चुकी है। क्या हर शख्स जो आरजू करे इसे मुयस्सर है? क्या आपको सब कुछ मिल जाता है जो आप चाहते हैं? नहीं, फिर बंदा कैसे बंदा रहा? अल्लाह ही के हाथ में है ये जहाँ और वो जहाँ भी। तो आयत 7 पे रिवायत है तफसीर इब्ने कसीर में, अब्दुल्ला बिन मसूद रावी हैं, अल्लाह के नबी ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में सिर्फ 2 दफ़ा देखा। एक मरतबा आपकी ख्वाहिश पर अमीनुल्लाह अपनी सूरत में आपको दिखाई दिए, आसमान के सारे किनारों पे उस वक्त आप थे और सिर्फ 2 पर खुले हुए थे, 600 पर हैं। आप जॉइंट से जॉइंट और जॉइंट से भी जॉइंट बड़ी चीज़ सोचे, उससे भी बड़े थे जिब्राईल। फरिश्ते ऐसे नहीं हैं जैसे हम खेल समझते हैं छोटे बड़े, बहुत बड़े होते हैं फरिश्ते, खूबसूरत भी बहुत होते हैं। और दोबारा उस वक्त जब कि जिब्राइल आपको लेकर ऊपर चढ़े। फिर इसी तरह से पहली 18 आयत के बारे में सही मुस्लिम की रिवायत है 431, इब्ने मसूद रावी हैं, जब अल्लाह के नबी मेराज पर गए तो सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, वो छठे आसमान में। अब ज़रा खूबसूरतियाँ सुनिए, सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे वो छठे आसमान में, ज़मीन से जो चढ़ता है वो यहीं आकर ठहर जाता है, जो ऊपर से उतरता है वो यहीं से ठहर जाता है, फिर ले लिया जाता है। अल्लाह ताला ने इस यक्ष सिदरतमा यक्षा, यानी जब सिदरतुल मुंतहा को ढांपती थी वो चीज़ें जो ढांपती थी, ये जिक्र किया। अब्दुल्ला कहते हैं कि यहाँ पतंगे सोने के, फिर रसूलुल्लाह को वहाँ 3 चीज़ें दी गईं, 5 नमाजें, सूरत बकरा की आखिरी आयतें, और तीसरे अल्लाह ने बख्श दिया आपकी उम्मत में से हर उसको जो शिर्क ना करे अल्लाह के साथ, बाकी तमाम तबाह करने वाले गुनाहों को। सोने की टिड़ियाँ हैं ऊपर आसमानों पे, क्या हसीन मंजर होगा। अल्लाह हमें नमाजों की कदर की तौफीक दे और सूरत बकरा की आखिरी आयतों को याद करने की तौफीक दे, जो अर्श का खजाना है। अमल की बात, नमाजों की हिफाजत करनी है, सूरत बकरा की आखिरी आयतें हर रात को पढ़ के सोनी है, और ख्वाहिश नफ्स का मुरीद नहीं बनना, वही की ज़ुबान सीखनी है, बात में झूठ नहीं मिलाना, झगड़ा नहीं करना, हद से नहीं बढ़ना, वहमो गुमान की पैरवी नहीं करनी। रुकू नंबर 6, 26 से 32 है, अल्लाह का दामने मगफरत बहुत बड़ा हुआ है। वकम मिन मलक इन फिस्समावात, और बहुत से फरिश्ते आसमानों में भी हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी नफ़ा नहीं दे सकती, मगर ये और बात है कि अल्लाह अपनी खुशी और अपनी चाहत से जिसके लिए चाहे इजाज़त दे दे। बेशक वो लोग आखरत पर जो ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों के औरतों वाले नाम रखते हैं, फेमिनिन। आज भी देखिए मूर्तियाँ औरतों जैसी होती हैं, चमकती दमकती रंग रोगन लगे हुए, यही कुछ उस दौर में भी रिवाज था। हालांकि इन्हें इसका इल्म नहीं, वो सिर्फ अपने गुमान के पीछे पड़े हुए हैं, और बेशक वहमो गुमान हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं आता। तो आप इससे मुंह मोड़ लें जो हमारी याद से मुंह मोड़े, और जिनका इरादा सिवाय दुनिया की ज़िंदगी के और कुछ नहीं, यही इनके इल्म की इंतहा है। आपका रब इससे खूब वाकिफ़ है जो इसकी राह से भटक गया, और वही खूब वाकिफ़ है इससे भी जो राह याफ्ता है, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, ताकि अल्लाह बुरे अमल करने वालों को इनके आमाल के बदले दे और नेक काम करने वालों को अच्छा बदला इनायत फरमाए। इन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई से भी, सिवाय किसी छोटे गुनाह के, बेशक तेरा रब बहुत कुशादा मगफरत वाला है, वो तुम्हें बखूबी जानता है जबकि इसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और जबकि तुम अपनी माओ के पेट में थे बच्चे से जनीन। बस तुम अपनी पाकी बयान न करो, आप ना यानी अपनी तारीफ़ें खुद ना करो, वही परहेजगारों को खूब जानता है। क्या सीखा? आखरत पर ईमान लाना है, गुमान की पैरवी नहीं करनी, नसीहत से मुंह फेरने वालों से मुंह मोड़ लेना है, अच्छे अमाल करने, गुनाह और बेहयाई के कामों से रुकना है, और अल्लाह ताला से डर के रहना है। आगे बहुत प्यारे तरीके से हज़रत इब्राहिम की तारीफ़ें आ रही हैं। रुकू नंबर 7 है, 33 से 62, सूरत नजम का ये आखिरी रुकू है। अफ़राइत अल्लज़ी तवल्ला, क्या आपने उसे देखा जिसने मुंह मोड़ लिया और बहुत कम दिया और हाथ रोक लिया, यानी देते देते रोक लिया, नियत की फिर पीछे हट गया। चेक कीजिए, हमने किसी नेकी की नियत तो नहीं की हुई थी जो अब छोड़ दी? करनी, देनी, लेनी, अल्लाह हमारी नियतों को पूरा करा दे। क्या इस इल्म गैब है कि वो सब कुछ देख रहा है? क्या इसे इस चीज़ की खबर नहीं दी गई जो मूसा अलैहिस्सलाम के, व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, वो इब्राहिम जिसने वफाओं का हक अदा कर दिया, वा वफा था वो इब्राहिम, वो वफादार इब्राहिम के सहीफ़ों में था, कि कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा। पिछले पारे में भी आया, यहाँ दोबारा आ गया, यानी पीछे सूरह फातिर में भी आए और अब यहाँ भी आ गया। कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा, और ये कि हर इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी इसने खुद कोशिश की, और बेशक इसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, फिर इसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और ये कि आपके रब ही की तरफ पहुँचना है। आय 39:40 पे लिख लें, हमारा दीन एफर्ट्स ओरिएंटेड है, रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं। कोशिशें देखी जाएंगी, नतायज नहीं, वरना तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो नाकाम ही हो गए, इतने सालों में इतने थोड़े लोग आगे आए। और ये कि वही हंसाता है और वही रुलाता है, और ये कि वही मारता है और वो जिंदा करता है, और ये कि उसी ने जोड़ा यानी नर और मादा पैदा किया, नुतफे से जब वो टपकाया जाता है, और ये कि इसी के ज़िम्मे पैदा करना है, और ये कि वही मालदार बनाता है और वही सरमाया देता है, और ये कि वही शेरा सितारे का रब है। अरबों के कुछ कबीले इस सितारे की पूजा करते थे, इसीलिए इसका नाम इधर आ गया। और ये कि इसी ने आदे उला को हलाक किया और समूद को भी, जिनमें से एक को बाकी भी ना रखा, और इससे पहले कौम नू को, फिर यकीनन वो बड़े जालिम और सरकश थे, और वो बस्तियां जो उल्टी गई थी, मुराद कौम लूत, इसने उलट दिया, फिर इस पर छा गया जो छा गया। बस इंसान तो अपने रब की किस किस नेमत के बारे में झगड़ेगा? ये नबी डराने वाले हैं पहले डराने वालों में से। आने वाली घड़ी करीब आ गई है, अल्लाह के सिवा इसका वक्त मुअय्यन पर खोल कर दिखाने वाला और कोई नहीं। बस क्या तुम इस बात से ताजुब करते हो और हंस रहे हो और रोते नहीं हो? यानी तुम्हें फन सूझ रहा है, मज़े सूझ रहे हैं, बल्कि तुम खेल रहे हो। अब अल्लाह के सामने सजदे करो और इसी की इबादत करो। क्या पता चला? 3 अहम असूल आय 39 में। नंबर 1, हर एक अपने अमल का बदला पाएगा। किसी के अमल का फल मुझे नहीं, इल्ला ये कि मेरा उसके काम में कोई हिस्सा हो, फिर मिलेगा। कोशिश और सही के बगैर कुछ भी हासिल नहीं। अमल के नुक्ते, हक से मुंह नहीं फेरना, थोड़ा सा दे के रुक नहीं जाना, करते ही जाना है, चाहे ज़िंदगी के आखिरी दम इस काम को करते रहना है। वफा का हक अदा करना है, तकबर नहीं करना, अल्लाह ताला को सजदा करना है और उसकी इबादत करनी है, और बस सूरत कमर पढ़नी है। आज हमने छोटी सी सूरत है, फौरन पढ़ी जाएगी, सूरत कमर 54 नंबर की सूरत है, 55 आयात हैं, चांद है, पीछे सितारा था, किसी का नाम भी है तो खुश हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरबत अस्सातु वन्शक्कल कमर। टॉपिक है, अल्लाह ने कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया, आयत 1 से 22। क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये अगर कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं ये पहले से चला आता हुआ जादू है। शक्के कमर, नबी का मौजज़ा था, आपकी उंगलियों से चांद दो टुकड़े हुआ था, आज भी चांद में कहते हैं कि वो दराड़ मौजूद है। मानने वाले ना माने तो उनकी बात है, लेकिन अल्लाह तो मनवा लेगा क़यामत के करीब लोगों को निशानियों से ही। उन्होंने झुटलाए और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। यकीनन इनके पास वो खबरें आ चुकी हैं जिनमें डांट डिपट की नसीहत है और कामिल अक्ल की बात है, लेकिन इन रौनी बातों ने भी इनको कोई फ़ायदा ना दिया। पस है नबी, तुम इनसे एराज करो, जिस दिन एक पुकारने वाला नागवार चीज़ की तरफ पुकारेगा, ये झुकी आँखों कब्रों से इस तरह निकल खड़े होंगे गोया कि वो फैला हुआ टिड्डी दल है, कीड़े। करने वाले की तरफ दौड़ते होंगे और काफिर कहेंगे ये दिन तो बहुत सख्त है। इमेजिनेशन में लाइए, कितना बोलते थे ये अल्लाह और इस्लाम और नबी के खिलाफ, और वहां क्या है, जर्रात, टिड्डियां, पतंगे नहीं होते जो बारिश के बाद निकलते हैं, सब बड़े बड़ों को अल्लाह इस तरह हकीर कर देगा उस दिन। इनसे पहले कौम नूह ने भी हमारे बंदे को झुठलाया था और दीवाना बतलाकर छिड़क दिया था। इस दर्द को महसूस कीजिए। आज हम कितने प्यार से हजरत नूह का नाम लेते हैं और अल्लाह कहते हैं मेरा वो नूह जो छिड़का गया, डांटा गया। फिर बस उसने अपने रब से दुआ की, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ए रब मैं बेबस हूँ तो मेरी मदद कर। बस हमने आसमान के दरवाज़ों को ज़ोर के मीह से खोल दिया। याद रखिए अल्लाह का एक नेक बंदा पुकार ले, ज़मीन और आसमान मिल जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी पकड़ से बचाए और ज़मीन से चश्मों को जारी कर दिया। बस इस काम के लिए जो मुकद्दर किया गया था, पानी खूब जमा हो गया और हमने इसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार कर लिया। और जो मरी आंखों के सामने चल रही थी, बदला इसकी तरफ से जिसकी नाकदरी की गई। कुफिर, ना शुक्री, कुफर किया गया। कभी आपकी कोई नाकदरी करे ना, तो इस आयत को याद कर लीजिएगा। अब इसका वजीफा ना बना दे कि नाकदरी वालों को यह आयत इतनी दफ़ा पढ़नी चाहिए। और बेशक हमने इस वाक़े को निशानी बनाकर बाकी रखा, बस कोई है जो नसीहत हासिल करने वाला हो? है कोई? जी हम सब खड़े हैं इंशाल्लाह। बताओ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें कैसी रहीं? और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, तकरार है इस जुमले की। बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला? अल्लाह हमें उन्हीं में रखे। कौम आद ने भी झुटलाया, बस कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें? हमने इन पर तुंदो तेज मुसलसल चलने वाली हवा एक मनहूस दिन में भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर दे पटकती थी, गोया के वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं। बस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना? यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, बस क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? जी अल्लाह से हम दुआ करते हैं हमें नसीहत मिले। ये जो शक्के कमर का वाक़ा था, ये जुबैर बिन मौत्तम से मिलता है रिवायत में, कि अल्लाह के नबी के दौर में चांद दो टुकड़ों में बट गया था, एक टुकड़ा एक पहाड़ पर और दूसरा टुकड़ा दूसरे पहाड़ पर। मुशरिकीन ने मक्का ये देखकर कहने लगे कि मोहम्मद ने हम पर जादू कर दिया, देखे फिर भी नहीं माने। अल्लाह अकबर। इस पर कुछ लोगों ने कहा, अच्छा अगर उन्होंने हम पर जादू कर दिया तो इनमें इतनी ताकत तो नहीं कि वो सभी लोगों पर जादू कर दें। यह मुस्नद अहमद की रिवायत है 16750। तो ना मानने वालों ने नहीं मानना, नहीं मानना और नहीं मानना। आगे आयत 17 में कुरान पाक की खूबियाँ और इसकी ज़ुबान के आसान होने की बात। पहली बात है, इसका मजमून बड़ा आसान है। आपको आसान लग रहा है कुरान? शुरू में मुश्किल लगा था ना कुछ दिन, अब आसान से आसानतर होता जाएगा इंशाल्लाह। फिर किस्सा गोई के ज़रिए भी इसमें नसीहत है। याद और हिफ्ज करना भी आसान है। फ़लसफ़े की नहीं, हकायक की किताब। फ़लसफ़ा मुश्किल होता है, बड़ी बड़ी बातें, इसमें तो छोटी छोटी बातें हैं डे टू डे लाइफ। और लोगों के लिए एक नेविगेटर है कि इसके मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करो। हमने क्या करना है? निशानियों को नहीं झुटलाना, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, नसीहत कबूल करनी है और कुरान से नसीहत हासिल करनी है। आमीन। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आगे जी रुकू नंबर 9, 23 से 40। नसीहत कैसे कबूल करनी है और क्या तरीका होगा? कस्सबत समूद बिन नुजुर, कौम समूद ने डराने वालों को झुटलाया और कहने लगे, क्या हम ही में से एक शख्स की हम फरमा बरदारी करने लगे? तब तो हम यकीनन गलती और दीवानगी में पड़े हुए होंगे। क्या हमारे सब के दरमियान सिर्फ इसी पर वही उतारी गई? नहीं, बल्कि वो झूठा शेही हो रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह बोला करें। कैसे गंदे जुमले बोलते थे और नबी के सामने, और हर दौर के नबी के तक कमोबेश यही कुछ हुआ। अब सब जान लेंगे कल को कि कौन झूठा और कौन शेखी खोर था। बेशक हम इनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजेंगे, बस है सवाल है, तो इनका मुंतजर है और सब्र कर। हाँ इन्हें खबरदार कर दे कि पानी इनमें तकसीम शुदा है, हर एक अपनी बारी पर हाजिर होगा। उन्होंने अपने साथी को आवाज़ दी जिसने ऊँटनी पर वार किया और इसकी कूंछें काट डाली, यानी पाँव के पीछे जो ये पट्टे होते हैं ना वो। बस क्यों कर हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना? हमने इन पर एक चीख भेजी, बस ऐसे हो गए जैसे कांटों की ऊंधी हुई बाढ़, घास कटी पड़ी हो ना, झाड़ियाँ घास फूस, उसकी तरफ इशारा। और हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया, बस क्या है कोई जो नसीहत कबूल करे। हर एक व्यक्ति जी अल्लाह ताला हम हैं, इंशाल्लाह हम कबूल करेंगे। बोलिए, कौम लूत ने भी डराने वालों को जुटलाया, बेशक हमने इन पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेजी, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के, इन्हें हमने सहर के वक्त निजात दी। अपने एहसान से हर शुक्रगुजार को हम इसी तरह बदला देते हैं। यकीनन लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें हमारी पकड़ से डराया था, लेकिन उन्होंने डराने वाले के बारे में शक और शुबा और झगड़ा किया। इससे क्या पता चलता है कि जिसकी दावत पे शक हो ना, बंदा उसकी बात पे यकीन नहीं रखता, कान भी नहीं डालता। फिर क्या हुआ, और इन यानी लूत अलैहिस्सलाम को इनके मेहमानों के बारे में फिसलाया, बस हमने इनकी आंखें अंधी कर दी और कहा कि मेरा डराना और मेरा अजाब चखो। और यकीनी बात यह है कि इन्हें सुबह सवेरे ही एक जगह पकड़ने वाले मुकर्ररा अजाब ने गारत कर दिया, बस मेरे अजाब और मेरे डरावे का मज़ा चखो। और यकीनन हमने कुरान को पिंदोबस यानी नसीहत के लिए आसान कर दिया, फहल में मुद्दकिर, बस क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या सीखा, नसीहत पकड़नी है, झूठ नहीं बोलना, शेखी खोरे नहीं बनना, खुद पसंद नहीं बनना, सब्र करना है, नसीहत कबूल करनी है और शुक्र करना है, और अल्लाह ताला की तरफ से जो वार्निंग आती हैं, जो तंबीहात आती हैं, उनको नहीं छुटलाना। उसके बाद है जी आखिरी रुकू सूरत कमर का, आयत नंबर 41 से 55। अल्लाह की पकड़ बड़ी ज़बरदस्त है। वलकद जाअल फिरऔना नुज़ुर, और फिरौनियों के पास भी डराने वाले आए, उन्होंने हमारी तमाम निशानियाँ झुठलाईं, बस हमने इन्हें बड़े गालिब कवि पकड़ने वाले की तरह पकड़ लिया। ए कुरैशियो, क्या तुम्हारे कुफार इन कुफार से कुछ बेहतर हैं, या तुम्हारे लिए अगली किताबों में छुटकारा लिखा हुआ है, या ये कहते हैं कि हम गलबा पाने वाली जमात हैं। अनकरीब ये जमात शिकस्त दी जाएगी और पीठ देकर भागेगी, बल्कि क़यामत की घड़ी इनके वादे का वक्त है। ज़रा सा इमेजिन करिए, और क़यामत बड़ी सख्त और कड़वी चीज़ है, कड़वी मुर्र अमुर। बेशक गुनाहगार गुमराही में और अजाब में हैं, जिस दिन ये अपने मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे, और इनसे कहा जाएगा दोजख की आग लगने के मज़े चखो। ये कैसे मज़े हैं जिसमें ज़िंदगी के सारे मज़े निकल गए, दूर से जहन्नम को एक लम्हे के लिए देखते ही दुनिया की हर नेमत भूल जाएगी। बेशक हमने हर चीज़ को एक मुकर्रर अंदाजे से पैदा किया, और हमारा हुक्म सिर्फ एक दफ़ा का एक कलेमा ही होता है, जैसे आँख का झपकना, और हमने तो तुम जैसे बहुत सारों को हलाक कर दिया। बस कोई है जो नसीहत लेने वाला हो, जो कुछ उन्होंने अमाल किए हैं सब नाम अमाल में लिखे हुए हैं, इसी तरह छोटी बड़ी बात भी लिखी हुई है। यकीनन हमारा डर रखने वाले जन्नत और नहरों में होंगे। ए अल्लाह हमें अपना डर दे दे, रास्ती और इज्जत की बैठक में कुदरत वाले बादशाह के पास, VIP लाउंज होगा ये, इंद मली के मुक्तदे। सोचिए आपको दावत मिले और अल्लाह आपका होस्ट हो, कैसा लगेगा, बड़े लोगों की बड़ी बातें। तो क्या पता चला, आयत 46-45 में रिवायत है बुखारी की, 48-77 है, इब्ने अब्बास रावी हैं, कहते हैं कि बदर की लड़ाई के मौके पर मैदान में एक खैमे में आप ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मैं तुझे तेरा अहद और वादा है नुसरत याद दिलाता हूँ, अल्लाह अगर तू चाहे तो मुसलमानों को फना कर दे, तो आज के बाद तेरी कोई इबादत ना की जाएगी। इस पर अबू बकर ने अल्लाह के नबी का हाथ पकड़ कर अर्ज़ किया, बस है या रसूल अल्लाह, आप अपने रब से खूब इल्हाक और जारी के साथ दुआ कर चुके। नबी करीम इस वक्त ज़रा पहने हुए थे, आप बाहर तशरीफ़ लाए तो आपकी ज़ुबान मुबारक पर यह आयत थी जो अभी हमने पढ़ा है ना, बस सात व अदहा व अमुर, यानी यकीनन कुफार की ये जमात हार जाएगी और सब पीठ फेर कर भागेंगे, लेकिन इनका असल वादा तो क़यामत के दिन का है, और क़यामत बड़ी सख्त चीज़ और बड़ी ही कड़वी चीज़ है। अल्लाह हमें उसकी तैयारी करने वाला बना दे। क्या पता चला, गुमराही में नहीं जाना, बेअक्ली में नहीं होना, और नसीहत को कबूल करना है, और अल्लाह से डर के रहना है। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जजा दे, और बेहतरीन तरीके से बरकतों वाला आपका वक्त हो। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.